الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو اخلاق عظیمہ کا درس دیا، ایسے اخلاق سکھائے کہ اللہ کے بندے اللہ کو پسند آ گئے اور اللہ نے دنیا میں ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا. 10 صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کا نام لے لے کر نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. ایسی انسانوں کی جماعت تیار کی کہ فرشتے بھی ان کو سلام کیا کرتے تھے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ تھے جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے بہترین نمونہ. آپ ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین بھائی تھے، ایک بہترین دوست تھے، ایک بہترین خاوند تھے، ایک بہترین تاجر تھے. جس انداز سے دیکھا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہترین نظر آتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تاریخ انسانیت میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ہر ہر بات کی تفصیل آج کتابوں میں محفوظ ملتی ہے. بلکہ ان احادیث کو جنہوں نے آگے روایت کیا ان کے حالات زندگی بھی محفوظ ہیں. اسماء و رجال کا فن امت نے ایسا ایجاد کیا کہ آج دنیا کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جی فلاں بات کی جو ہے اتھینٹسٹی کیا ہے. اتنی کامل مکمل زندگی کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے اس کو بھی گنا ہوا تھا. آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا تکیہ کیسا تھا، آپ کی چادر کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں کیسی تھیں، آنکھیں مبارک کیسی تھیں، ریش مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، آپ کی ازواج مبارکہ کون کون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر کیا ہجرت کا، کیسے آپ نے سفر کیا اپنی زندگی میں شام کا، آپ نے کیسے غزوہ میں حصہ لیا، کس کس غزوہ میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیسے زندگی گزارتے تھے، رات میں کیسے زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے. ہم نے دیکھا دنیا کا ہر بندہ نیک سے نیک ہو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ میں اور آپ الگ کمرے میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، باہر نکل کے بات نہ کرنا، उसको डर होता है कि अगर बीवी ने ढोल का पोल खोल दिया तो क्या बनेगा। पूरी तारीख इंसानियत में एक ऐसी शख्सियत नज़र आती हैं और हमारे कायद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिन्होंने अपनी बीवियों को भी हुक्म दिया कि तुम जो मुझे करता हुआ देखती हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे लोगों तक पहुँचाओ। इतनी ट्रांसपेरेंट लाइफ तारीख इंसानियत में किसी की नहीं हो सकती और इतनी कामिल ज़िंदगी किसी की नहीं हो सकती। लोग बड़े बड़े काम करते हैं दुनिया में लेकिन उनके मरने के बाद कहा जाता है जी उसने बड़े काम किए और भी करना चाहता था, ज़िंदगी ने वफा ना की। फलाँ बंदे ने बड़े मुल्कों को फतह किया, अगर वो ज़िंदा रहता तो और भी मुल्कों को फतह करता मगर ज़िंदगी ने वफा ना की। फलाँ बंदे ने बड़ी किताबें लिखी और भी वो किताबें लिखता मगर ज़िंदगी ने वफा ना की और वो फौत हो गया। फलाँ बंदे ने ये काम किए, वो और भी कुछ करना चाहता था, बड़े लोगों की हिदायत का सबब बना, और भी अगर ज़िंदा रहता तो ये हो जाता और वो हो जाता। एक शख्सियत ऐसी है जिनकी मुबारक ज़िंदगी के बारे में यही कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी कामिल और मुकम्मल थी। चुनाचे मैदान अराफात में नबी अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 सहाबा की मौजूदगी में पूछा, ऐ लोगों बताओ कि मैं जिस मकसद को लेकर दुनिया में आया था क्या मैंने उस मकसद को पूरा कर दिया। तो 1,24,000 सहाबा ने बेअक ज़बान होकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लम अद्दैत अल अमाना व नसह अल उम्मा, आपने अमानत को पहुंचा दिया, उम्मत को नसीहत कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया और फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू इस बात पे गवाह रहना मैं जो मकसद दुनिया में लेके आया था उसको पूरा करके दुनिया से जा रहा हूँ। तो जब बाकी सब लोगों की जिंदगी अधूरी है तो अधूरी लोगों वाली ज़िंदगी को हम अपना कायद क्यों बनाएं? हमें उस शख्सियत को कायद बनाना है जिसकी ज़िंदगी पूरी है, कामिल है, और वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी है। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की जितनी तफसील किसी को मालूम होती चली जाएगी ना उतना उस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ज़्यादा होती जाएगी। अंग्रेजी का एक फिक्रा है, द मोर यू नो हिम द मोर यू लव हिम, जितना उसको जानते जाओगे उतना तुम उससे मोहब्बत ज़्यादा करते जाओगे। लोगों को मोहब्बत क्यों नहीं, वो जानते नहीं, उनको इल्म नहीं है। अगर इल्म होता कि मेरे महबूब की मुबारक ज़िंदगी कैसी थी तो ये भी मोहब्बत करने वालों की कतार में खड़े हो जाते। मेरा कायद है वो ज़िंदगी पैगाम था जिसका, मोहम्मद नाम था जिसका, मोहब्बत काम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज़ थी जिसकी चमन अंजाम था जिसका। फिर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म अता किया, इतना इल्म अता किया कि अव्वल और आखिरी सब के उलूम को जमा किया जाए तो नबी अलैहिस्सलाम का इल्म उन सबसे ज़्यादा हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, वअल्लमका मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम, इतना इल्म अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। चुनाचे एक ईसाई राइटर है, उसका नाम है माइकल हार्ट, कोई 15-20 साल पहले उसने किताब लिखी और किताब का उन्वान था ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन हिस्ट्री, के तारीख में जितनी शख्सियतें बड़ी गुजरी हैं जिन्होंने तारीख को मुतासर किया उनमें से 100 शख्सियतों की उसने लिस्ट लिखी और उन 100 शख्सियतों में सबसे पहले उसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। उसने ईसा अलैहिस्सलाम का भी किताब में तज़किरा किया है, मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया, न्यूटन का भी किया, शेक्सपियर का भी किया, आइंस्टाइन का भी किया, बड़े बड़े सब इंसानों का तज़किरा किया मगर सबसे पहले नंबर पर उसने नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। खुद ईसाई बंदा है। मैं जब उस किताब को पढ़ा तो उस किताब का पहला फिक्रा था कि माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स कि मैंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है कि इस फहरिस्त में नंबर वन पर उनका तज़किरा करूँ, इससे बाज़ कारीन बड़े हैरान होंगे, मगर मैं ऐसा करने पर इसलिए मजबूर हुआ हूँ कि दुनिया में जितने लोग आए और वो बड़ी शख्सियतें बने, ये वो लोग थे जिन्होंने वक्त के बेहतरीन उस्तादों से, प्रोफेसरों से पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ा, और फिर अपने वक्त में वो बड़े इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार गए। एक ही शख्सियत ऐसी नज़र आती है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी इंसान के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे, और फिर उन्होंने अगर दुनिया को इल्म का दर्स दिया है, उनका हक बनता है कि मैं उन्हें पहले नंबर पर बयान करूँ। तो अल्लाह के महबूसों को अल्लाह ने इल्म ऐसा अता किया कि सुभानअल्लाह, आपने इंसानियत के सामने इल्म के दरिया बहा दिए। उम्मी और दकीका दान आलम बेसाया और साहिबान आलम, देखने में अनपढ़ थे मगर दुनिया के सबसे बड़े दकीका दान थे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा इल्म अता फरमाया था। हमने एक मरतबा एक मैनेजमेंट का कोर्स किया तो जर्मनी का एक प्रोफेसर था जो 9 यूनिवर्सिटियों का विजिटिंग प्रोफेसर था, वो आया हमें वो कोर्स पढ़ाने के लिए। पूरे मुल्क के बहुत काबिल इंजीनियर्स को इकट्ठा किया गया था। तो मिस्टर ब्रॉडी उसका नाम था, जर्मन था वो। उसने आके हमें दर्स दिया और कहा कि पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि तालिब इल्मी पढ़ने का ज़माना होता है, जब स्कूल कॉलेज से बंदा पढ़ के फारिग होता है फिर किताबों का वास्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूरोपी दुनिया ने इस चीज़ को ढूंढा है कि आज के साइंसी दौर में बंदे को बाद में भी पढ़ना पड़ता है। चुनांचे जो लोग प्रैक्टिकल इंजीनियर बन जाते हैं उनको सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंसें अटेंड करनी पड़ती हैं, बुलेटिन पढ़ने पड़ते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं ताकि उनका इल्म अपडेट रहे। उसने 3-4 मरतबा यही बात की कि यूरोपीय यूनियन इस नतीजे पर पहुंची है कि इंसान को सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ना पड़ता, पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। जब उसने 3-4 दफ़ा ये बात रिपीट की तो मैंने इशारा किया कि मैं आपसे कोई बात शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा, मिस्टर अहमद आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा, आप तो ये लफ्ज़ कह रहे हैं ना कि यूरोपीय यूनियन इस नतीजे पर पहुँची कि बंदे को बाद में भी पढ़ना पड़ता है, ये आपकी बात सही नहीं है। कहने लगा, सही बात क्या है? मैंने कहा, सही बात यह है कि सबसे पहले तारीख इंसानियत में हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि स्कूलों कॉलेजों के बाद भी बंदे को पढ़ना पड़ता है। वो हैरान हो गया, कहते तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि तुम इल्म हासिल करो पिंघूड़े से लेकर कब्र में जाने तक। तो तारीख इंसानियत में पूरी ज़िंदगी इल्म करने का कंसेप्ट ये मेरे पैगंबर इस्लाम का है, तुम्हारा नहीं है। जब मैंने ये बात उसको बताई कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, तो हैरान हो गया। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला सारे लोगों के सामने और अपनी डायरी लाकर मुझे दी और मुझे कहने लगा कि इसको अरबी में भी लिख दो और इसका इंग्लिश में तर्जमा भी लिख दो। मैंने लिख दिया। फिर वो आया और कहने लगा सब लोगों के सामने कि मैं आज इस क्लास के सामने अहद करता हूँ, आइंदा जहाँ भी मैं लेक्चर दूँगा मैं ये नहीं कहूँगा कि यूरोपीय यूनियन ने यह कहा, मैं कहूँगा कि तारीख इंसानियत में मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले ये तसव्वुर किया। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लम के बारे में फरमाते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, हमने आपकी शान को बुलंद किया। और वाकई अल्लाह ताला ने जैसे कहा अल्लाह ने उसको पूरा कर दिखाया। तारीख़ इंसानियत में किसी को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी इज्जत हमारे पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने अता फरमाई। आप गौर कीजिए कि मुसलमानों ने तो लिखा ही सही, ईसाइयों ने भी लिखा, हिंदुओं ने भी लिखा, सिखों ने भी लिखा, अशआर भी लिखे, किताबें भी लिखी उनकी अजमत के बारे में। और वैसे भी ज़रा सुन लीजिए कि अजान जब हम देते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बुलंद करते हैं, पढ़ते हैं ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद होता है ना। अब ज़रा गौर कीजिए, साइंसी दौर है ना, तो लोग साइंसी बात जल्दी समझते हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले जो सूरज तुलू होता है ना, तो मशरक की तरफ जो मुल्क है उसका नाम है फिजी, वो ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। पूरी दुनिया की मशरक उसको कहा जाता है, वहाँ सबसे पहले सूरज तुलू होता है, फिर उसके बाद धूप आगे आनी शुरू हो जाती है। चुनाचे सबसे पहले तहज्जुद का वक्त फिजी में होता है, फिर फजर की अजानें फिजी से शुरू होती हैं पूरी दुनिया में। अब जब अजान का वक्त होता है ना, तो एक मुल्क में आधा घंटा तो अजानें होती रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी नमाज का वक्त होता है ना, पहले इस्लामाबाद में होता है, फिर लाहौर में, फिर फैसलाबाद में, फिर जंग में, फिर चलते चलते कराची में आधा घंटा बाद जाकर उस नमाज का वक्त आता है। हम जो नमाज यहाँ पर 5 बजे पढ़ते हैं ना, कराची वाले 5:30 बजे पढ़ रहे होते हैं। तो आधा घंटा पूरे मुल्क में अजानें होती ही रहती हैं। यहाँ अजान ख़त्म हुई तो अगली मस्जिद में, अगली मस्जिद में, अगली मस्जिद में चलता रहता है सिलसिला। अब फिजी में जब फजर का वक्त होता है तो पूरे मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में अजानें शुरू हो जाती हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद होना शुरू हो जाता है। जब फजर का वक्त वहाँ पर मुकम्मल होता है तो उसके बाद उससे अगला मुल्क आता है ब्रुनाई, वहाँ पर फजर का वक्त शुरू हो जाता है। तो फिजी वाले तो फजर की नमाजें शुरू कर देते हैं और ब्रुनाई वाले फिर फजर की अजानें देनी शुरू कर देते हैं। फिर ब्रुनाई होते होते फिर घंटा लग जाता है। जब वहाँ अजान का वक्त ख़त्म होता है तो उसके बाद मलेशिया में फजर का वक्त शुरू हो जाता है, फिर पूरे मुल्क मलेशिया में फजर की अजान शुरू हो जाती है। जब मलेशिया में फजर का वक्त ख़त्म होता है तो उसके बाद सिंगापुर में शुरू हो जाता है, फिर सिंगापुर में अजानें शुरू हो जाती हैं। सिंगापुर में अजानें होते होते अभी ख़त्म नहीं होती कि इधर बर्मा में वक्त शुरू हो जाता है, तो बर्मा में अजानें शुरू हो जाती हैं। फिर बर्मा में जब अजानें मुसलमान मुकम्मल करते हैं, उसके बाद इंडिया में शुरू हो जाती हैं। पूरे इंडिया में फजर की अजान शुरू हो जाती है, उसमें शायद 2 घंटे लगते हो, चूँकि इंडिया एरिया के अतबार से बहुत बड़ा है, और इंडिया में और पाकिस्तान में 1/2 घंटे का फ़र्क है। तो अभी इंडिया में अजानें हो रही होती हैं कि पाकिस्तान में वक्त हो जाता है, तो पूरे पाकिस्तान में फजर की अजानें शुरू हो जाती हैं। फजर की अजानें पाकिस्तान में हो रही होती हैं कि 1 घंटे का फ़र्क है दुबई के साथ, वहाँ पर फजर की अजानें शुरू हो जाती हैं। फिर दुबई में फजर की अजानें हो रही होती हैं कि 1 घंटे का फ़र्क है सऊदी अरेबिया के साथ, तो सऊदी अरब में फजर की अजानें शुरू हो जाती हैं। अभी फजर की अजानें सऊदी अरब में हो रही होती हैं कि पीछे फिजी में जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, तो वहाँ जोहर की अजानें शुरू हो जाती हैं। चुनाचे 24 घंटे में एक भी ऐसा लम्हा नहीं किसी न किसी मुल्क के, किसी न किसी शहर की, किसी न किसी मस्जिद में अजान न हो रही हो और अल्लाह अपने महबूब का नाम बुलंद ना फरमा रहे। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिसीवर होता कि हम बैठ के पूरी दुनिया की अजानें सुन रहे होते, तो हम गौर करते कि यहाँ अजान हुई, अब यहाँ हुई, अब यहाँ हुई, अब यहाँ हुई, और होते होते अजान, अभी हम तो सऊदी अरब पहुँचे हैं, मुसलमान तो सऊदी अरब से आगे यूरोप में भी है, अमरीका, बल्कि उससे भी आगे तक हैं मुसलमान। तो अगर पूरी दुनिया की अजानों का हिस्सा लें तो लगता है कि अभी अजानें फजर की चल रही होती हैं, पीछे जोहर की अजान शुरू हो जाती है, फिर अजान जोहर की चल रही होती है, पीछे असर की अजान, फिर मगरिब की अजान, फिर ईशा की अजान, और अभी दुनिया में ईशा की अजानें मगरबी ममालिक में हो रही होती है, पीछे फजर में फिर फजर की अजानें शुरू हो जाती हैं। तो 24 घंटे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को पूरी दुनिया के अंदर बुलंद फरमा दिया। सच फरमाया व इन्नका लाला खुलु न, सच फरमाया व रफ़ाना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाया। एक और बात पर गौर कीजिए कि दुनिया में इंसान को उरूज मिलता है, फिर उसके बाद जवाल भी आता है। शुरू में बचपन होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर जवानी उरूज का ज़माना है, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा, कमज़ोरी का ज़माना, बिनाई भी कम हो जाती है, दांत भी टूट जाते हैं, जिस्म में कमज़ोरी भी आ जाती है, बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, तो कमज़ोरी का वक्त आ गया, उरूज के बाद फिर जवाल शुरू हो गया। यही काम सूरज के साथ है। सुबह में तुलू होता है, फिर उसकी हरारत बढ़ते 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 दोपहर के वक्त बिल्कुल उसकी शिद्दत पे हरारत होती है, फिर उसके बाद जवाल शुरू होता है और जवाल होते होते बिल आखिर मगरिब के वक्त वो गुरूब हो जाता है। तो दुनिया में हर चीज़ का दस्तूर यही है कि पहले उरूज मिलता है, उसके बाद जवाल आता है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सम की मुबारक ज़िंदगी को ऐसे बनाया कि आप मुबारक ज़िंदगी में सिर्फ उरूज ही था, जवाल का नामो निशान ही नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं वलल आखिरत खैरुल्लक मिनल उला, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आने वाला वक्त आपके गुजरे वक्त से ज़्यादा बेहतर होगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से आपका लड़कपन आला, आपके लड़कपन से आपकी जवानी आला, आपकी जवानी से आपका बुढ़ापा आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में रहने से आपका आखिरत की तरफ चले जाने वाला हिस्सा आला, फिर आपकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी से क़यामत के दिन आपका मकाम महमूद पे जाकर सजदा करना उससे भी आला, फिर आपका मकाम महमूद से जन्नत में चले जाना उससे भी ज़्यादा आला। अल्लाह ने आपको ऐसी ज़िंदगी दी कि जिसमें उरूज ही उरूज था और अल्लाह ने आपको जवाल से महफूज फरमा लिया था। इसलिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ने शेर कहा, लना शमसुम वलिल आफाक शमसु, ए आसमान एक तेरा चांद, एक तेरा सूरज है और एक मेरा भी सूरज है, लेकिन तेरा सूरज फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में ईशा के बाद तशरीफ़ ले जाते थे अहले खाना के पास, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आसमान तेरा सूरज तो फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज तो ईशा के बाद तुलू होता है, और ए आसमान के सूरज सुन ले कि तुझे उरूज तो मिलता है मगर तुझे जवाल भी है, तू गुरूब हो जाता है, लेकिन मेरा सूरज ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में उरूज है, जवाल अल्लाह ने लिखा ही नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल्लका मिनल उला, महबूब आपकी ज़िंदगी में आने वाला वक्त आपके गुजरे वक्त से ज़्यादा आला और ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपने हबीब सल्लम के बारे में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, दुनिया के लिए नहीं, जहानों के लिए, इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, जिन्नों के लिए, सब के लिए रहमत, हत्ता के फरिश्तों के लिए रहमत बनाकर भेजा। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील साम से पूछा कि जिब्राइल, क्या तुझे मेरी रहमतुल लिल आलमीनी से हिस्सा मिला? अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तशरीफ़ लाने से पहले मैं अपने अंजाम के बारे में बड़ा डरता रहता था, मैंने शैतान को अपनी आँखों के सामने मरदूद होते देखा, रांदा दरगाह होते देखा, तो मैं अल्लाह के जलाल से कांपता था, डरता था, पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने आखिरी किताब में मेरे बारे में आयात नाज़िल फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीनिन मुताइन थम्मा अमीन, इन आयतों के उतरने के बाद मुझे अपने अच्छे अंजाम का यकीन हो गया, आपकी रहमतुल लिल आलमीन से मुझे भी हिस्सा नसीब हो गया। फिर अल्लाह ताला अपने हबीब सम के बारे में फरमाते हैं, वाला सौफ़ युती का रब्बू का फतर दो, ए मेरे महबूब, अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसका माना पता क्या है? इसका माना ऐसे है कि जैसे कोई बंदा किसी को दे रहा हो ना कोई चीज़, और देते देते उसकी लपें भर जाएं, तो लेने वाला कहता है बस बस बस, तो फतरदा का मान है बस बस बस। ए मेरे महबूब, तुझे अल्लाह इतना देगा कि तू बस बस करेगा, इतना अता करेगा, तू राजी हो जाएगा। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी अलैहिस्सलाम को एक ऐसी दुआ मांगने का इख्तियार दिया कि जैसे मांगी जाएगी वैसे कबूल हो जाएगी। तो सहाबी ने पूछा, अल्लाह के वसल्लम फिर सब अंबिया ने मांगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी ने कोई ना कोई दुआ मांगी, जैसी मांगी अल्लाह ने वैसी कबूल फरमा ली। तो सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के वसल्लम आपको भी इख्तियार मिला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह ने मुझे भी इख्तियार दिया। ए अल्लाह के वसल्लम आपने कौन सी दुआ मांगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दुनिया में कोई दुआ नहीं मांगी, मैं आखिरत में वो दुआ मांगूंगा और उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि क़यामत का दिन बहुत खौफ का दिन होगा, बहुत दहशत का दिन होगा, हर बंदे पर खौफ तारी होगा, रोंगटे खड़े होंगे, पसीना होगा, सूरज करीब होगा और बंदा पसीने में डूबा हुआ होगा और ऐसे खौफजदा होगा कि जैसे पता नहीं आज मेरे साथ होना क्या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि जहन्नम में उबाल आएगा, जैसे हंडिया में उबाल आता है ना, या दूध कड़ रहा हो, गर्म हो रहा हो तो उबाल आता है और दूध बाहर को गिरने लगता है, ऐसे जहन्नम में उबाल आएगा और उसके बड़े बड़े अंगारे जो होंगे वो आसमान की तरफ उड़कर जाएंगे, और फिर उसके बाद जब वो वापस गिर रहे होंगे तो मखलूक के ऊपर एक खौफ होगा, हर बंदे को ये फील होगा कि कहीं अंगारे मेरे सर के ऊपर ना आकर गिरे, तो हर बंदा खौफ की वजह से खड़ा होगा और पसीना होगा और शिद्दत होगी परेशानी की। उस वक्त सब अंबिया मिलकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसानियत की शफात कीजिए ताकि अल्लाह अपनी उम्मत पर मामला आसान कर दे। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मकाम महमूद अता फरमाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम मकाम महमूद पर जाकर सजदा करेंगे। आपने इरशाद फरमाया, मैं सजदा करते हुए रोने लग जाऊंगा, जब मैं मकाम महबूब पे रो के सजदा करूंगा अल्लाह मुझे पूछेंगे, ऐ मेरे महबूब इरफा रासका, आप अपने सर को उठाइए, सल तो उता, आप मांगिए, जो मांगेंगे मैं आपको अता करूंगा। तो नबी इस्लाम फरमाते हैं कि फिर मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा, या अल्लाह आपके बंदों के ऊपर ये मुश्किल वक्त है, आप हिसाब किताब शुरू करवाइए ताकि मखलूक के ऊपर ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हिसाब के लिए आगे पेश कीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक लानो को हाथ पकड़ के कहेंगे, अबू बकर आगे हो जाओ और अपना हिसाब दो। सैयदना सिद्दीक रोने लग जाएंगे, अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उम्र के बड़े हिस्से में जाकर मुसलमान हुआ, किसी ऐसे बंदे को आगे कर दें जो बचपन से मुसलमान हुआ हो, कलमा पढ़ा हो और पूरी ज़िंदगी उसने इस्लाम में गुजारी हो। तो नबी साहब फरमाएंगे, नहीं अबू बकर तुम आगे हो, इतना हिसाब दो। तो अबू बकर सिद्दीक लानो नबी साहब के हुक्म की तामील में आगे बढ़ेंगे और वो भी सजदे में गिर जाएंगे और रोने लग जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक लानो को रोते देखकर अल्लाह फरमाएंगे, अबू बकर तू रो रहा है, तूने तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने एहसानात किए, इतने एहसानात किए कि मेरे महबूब ने ये फरमाया था, मैंने दुनिया में सबके एहसानात के बदले दे दिए, अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा। अबू बकर तू रोता है, अभी तो तेरे एहसानात का मैंने बदला देना है, जब मैंने तुझे बिला हिसाब जन्नत अता कर दी। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक लानो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उमर लानो को हुक्म देंगे, वो भी रोने लग जाएंगे, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उम्र के बड़ी हिस्से में जाकर मुसलमान हुआ, उम्र का बहुत सारा हिस्सा मेरा कुफ्र और शिर्क में गुजरा हुआ है, आप किसी ऐसे बंदे को आगे करें कि जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम में गुजारी हो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे उमर हिसाब जो आगे बढ़ो, हुक्म की तामील में उमर लाना भी आगे बढ़ेंगे और वो भी अल्लाह के खौफ से रोने लग जाएंगे। जब वो रोएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उमर तुम रो रहे हो, तुम राद मुस्तफ़ा थे, तुम्हारे लिए तो मेरे महबूब दुआएं मांगते थे और तुम्हारे इस्लाम कबूल करने ने तो इस्लाम को रौनक बख्शी, इस्लाम को तकवीयत मिली तुम्हारी वजह से। आज तुम रोते हो, ये तो तुम्हारे इनाम का दिन है, चलो मैंने तुम्हें मेरे हिसाब जन्नत अता फरमाई। फिर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी को आगे भेजेंगे, उनका भी यही मामला होगा, वो भी रोना शुरू कर देंगे। जब वो रो रहे होंगे तो अल्लाह फरमाएंगे उस्मान तुम रोते हो, हालांकि तुमने तो मेरे महबूब पर ऐसा एहसान किया कि मेरे महबूब ने दुनिया में दुआ मांगी थी, या रहमान सहिलिल हिसाब अलल उस्मान, ए रहमान उस्मान के ऊपर हिसाब को आसान फरमा देना। वाकया उसका यूं है, ईद का दिन था तो नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं कोई चीज़ मंगाऊँ और पकाऊँ, ईद का दिन है, मदीना की बेवाएँ यतीम भी आएंगे, हम घर वाले भी हैं तो हम खुद भी खाएँगे उनको भी खिलाएँगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास तो इस वक्त जेब में कुछ भी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन खामोश हो गई और नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ाने तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाकर वापस आए तो अल्लाह के हबीब सल्लम ने अजीब मंजर देखा, घर में खाना बना हुआ है और आने वाली औरतें भी खूब हैं, उनको भी खाना खिलाया जा रहा है और बच्चे भी खाना खा रहे हैं। तो नबी साहब बड़े हैरान हुए, पूछा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, आयशा मैंने तो पैसे नहीं दिए थे तो ये खाना कैसे पका और कैसे लोग खा रहे हैं? तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, ए अल्लाह के हबीब सल्लम जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपके ग़ुलाम उस्मान इब्ने अफ़ान ने आपकी हर हर जौजा के घर एक ऊंट सामान से लदा हुआ तोहफे के तौर पर भेजा, तो मुझे भी एक ऊंट ग्रॉसरी से लदा हुआ मिला, उसमें घी भी था आटा भी था, मैंने उसमें से ये चीज़ बनाई ये चीज़ बनाई, अब हम भी खा रहे हैं और सबको खिला भी रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का दिल इतना खुश हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, या रहमान सहिल हिसाब उस्मान, ए रहमान उस्मान के हिसाब को क़यामत के दिन आसान फरमा देना। चुनांचे अल्लाह फरमाएंगे कि तेरे बारे में तो मेरे महबूब ने यह दुआ दी थी, मैंने तेरे हिसाब को आसान कर दिया, या तुझे भी बिला हिसाब जन्नत अता फरमा दे। फिर सईद अली लानो आगे होंगे, वो भी रोएंगे, मगर अल्लाह ताला भी फरमाएंगे कि तेरे साथ तो मेरे महबूब ने मुआखात की थी, तू उनका भाई बना था, तू उनकी जगह पर मक्का मुकरमा उनके बिस्तर पे लेटा था और तूने तो उनका दिल यहाँ खुश किया यहाँ खुश किया, ये किया ये किया, चल मैंने तुझे बिला हिसाब जन्नत अता फरमा दी। तो जब इन चारों हजरात के आमाल नामे को अल्लाह ताला देखेंगे, मुद्दसीन ने लिखा है अल्लाह को इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, उसके बाद बाकी सारी इंसानियत का हिसाब अल्लाह ताला रहमत के साथ लेंगे। अल्लाह का जो जलाल होगा वो अल्लाह के जमाल में बदल जाएगा, गुस्सा जो था ना वो खुशी में बदल जाएगा, उनकी जिंदगियों को देख के अल्लाह को इतना प्यार आएगा कि बाकी सारी इंसानियत का अल्लाह ताला हिसाब प्यार के साथ लेंगे और इतनी रहमत से हिसाब लेंगे कि हैरान। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और उसके गर्द रहमत की चादर तान देंगे, पर्दा कर देंगे, मखलूक से वो बंदा छुप जाएगा। फिर अल्लाह उस बंदे को कहेंगे तूने ये गुनाह किया तूने ये गुनाह किया, वो मानता जाएगा मानता जाएगा, इतने गुनाह गिनवाएंगे कि उस बंदे को यकीन हो जाएगा आज मैं नहीं बचता। मगर अल्लाह फरमाएंगे अच्छा तूने इतने गुनाह तो किए लेकिन तू मुझसे दुनिया में माफ़ियाँ मांगता था, मैंने तेरी उस तौबा को कबूल कर लिया और तेरे सब गुनाहों को मैंने नेकियों में तब्दील कर लिया। अल्लाह उसके सब गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। जब उसके गिर्द से पर्दा हटेगा तो मखलूक देखेगी ये ऐसा बंदा है कि जिसके नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं लिखा हुआ। हदीस में आता है कि मखलूक समझेगी शायद ये अंबिया में से कोई नबी है जिसके नामे अमाल में कोई गुनाह है ही नहीं, हालांकि वो एक आम उम्मती होगा। अल्लाह अपनी रहमत से उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। एक हदीस मुबारक में आता है एक बंदे को अल्लाह बुलाएंगे और उसके गिर्द रहमत की चादर डाल देंगे, कोई उसको नहीं देख सकेगा। फिर अल्लाह उसको उसके छोटे छोटे गुनाह गिनवाएंगे, ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह, वो चुप खड़ा रहेगा मगर दिल में सोच रहा होगा कि मेरे बड़े बड़े गुनाह का तो अभी नंबर आया ही नहीं है। अल्लाह छोटे 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 गुनाह गिनवा देंगे और फिर कहेंगे अच्छा हमने तेरे सब गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, तो वो खुद कहेगा या अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह बाकी हैं। तो अल्लाह को इतना प्यार आएगा कि अल्लाह मुस्कुरा पड़ेंगे उसके अमल पे कि वो बंदा खुद कह रहा है कि मेरे अभी तो बड़े बड़े गुनाह बाकी हैं, अल्लाह बड़े गुनाहों को बड़ी नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। ऐसा अल्लाह ताला रहमत से हिसाब लेंगे कि इंसान को हैरत होती है। हदीस पाक में आता है एक नेकी की वजह से दो बंदे जन्नत में जाएंगे, एक नेकी की वजह से दो बंदे जन्नत में जाएंगे। वो कैसे कि एक बंदे का हिसाब होगा, उसकी एक नेकी कम होगी एक गुनाह ज्यादा होगा, तो फरिश्ता कहेगा अगर तेरे पास एक नेकी और होती ना तो नेकी और गुनाह बराबर हो जाते, अल्लाह अपनी रहमत से तुझे जन्नत भेज देते। अब तेरा चूंकि एक गुनाह ज्यादा है लिहाजा तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो बंदा फरिश्ते से कहेगा क्या मैं किसी से एक नेकी मांग सकता हूं, तो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसको कहेगा हाँ तुम मांग सकते हो। चुनाचे वो बंदा सबसे पहले अपने भाई के पास आएगा, भाई देख हम दोनों कारोबारी थे, तेरे ऊपर कर्जे होते थे तो मैं चुका देता था, मेरे ऊपर कर्जे होते थे तो आप चुका देते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी जिंदगी गुजार के आए, आज मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है और मुझे एक नेकी की जरूरत है और तेरे पास तो बहुत नेकी हैं, तूने तो बड़े चिल्ले लगाए और बड़ी मस्जिदें बनवाई और बड़े मदरसे बनवाए और नेक काम किए, तो भाई एक नेकी मुझे दे दो। वो कहेगा नहीं जब तक मेरा हिसाब नहीं हो जाता ना मैं एक नेकी नहीं देता, मुझे क्या पता मेरा अंजाम क्या होगा, तो भाई इनकार कर देगा। फिर वो अपनी वालदा के पास आएगा, अम्मी आप मेरी माँ हैं, मेरे ऊपर कुर्बान होती थी, मुझे कहती थी बेटा तुझे तो गर्म हवा भी न लगे और मुझे आप कहती थी मैं तो आपके ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दूं, अम्मी मुझे एक नेकी की जरूरत है और आपके पास तो बहुत नेकी हैं अंबार लगे हुए हैं, आप तहज्जुद पढ़ती थी ये करती थी वो करती थी, अम्मी एक नेकी मुझे दे दें। वो कहेगी बेटा जब तक मेरा अपना हिसाब नहीं हो जाता मैं एक नेकी नहीं देती, मुझे क्या पता मेरे साथ क्या होगा। फिर वो अपने वाले से मांगेगा अब्बू मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे परवरिश दी पाला और कितना मेरे ऊपर मेहरबान थे और कितना मेरे जो है मोहब्बत करते थे, आपके पास बहुत ज्यादा नेकियां हैं, आप तो मस्जिद कमेटी के सदर भी थे और आप तो ये भी थे वो भी थे और बहुत नेकियां हैं, एक नेकी मुझे चाहिए। वो कहेगा बेटा जब तक मेरा अपना हिसाब नहीं हो जाता मैं एक नेकी भी नहीं दे सकता, मुझे कुछ पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा, हर कोई डरा हुआ होगा। फिर वो अपनी बीवी के पास आएगा, बीवी भी इनकार कर देगी। फिर वो अपने बेटों के पास आएगा, बेटे भी इनकार कर देंगे। जब सारे रिश्तेदार नेकी देने से इनकार कर देंगे ना तो वो रोने लग जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले ही फरमा दिया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी, तो जब वो रो रहा होगा ना बहुत रो रहा होगा कि आज मेरे साथ किसी ने भला नहीं किया, एक नेकी मुझे किसी ने नहीं दी, मुझे कितनी उम्मीदें थी इनके साथ कोई मेरे काम नहीं आया। तो एक बंदा उसके करीब से गुजर रहा होगा वो उसको रोता देख के खड़ा हो जाएगा, पूछेगा यार ये इतना क्यों रो रहा है, फरिश्ता कहेगा इसने एक नेकी मांगी थी अपने लव्ड वन से और किसी एक ने भी नेकी नहीं दी और ये अब मायूस होकर रो रहा है। तो वो कहेगा अच्छा मेरे नामे अमाल में सिर्फ एक नेकी है, वो एक नेकी इसे दे दो, मैंने तो जहन्नम में जाना ही है, एक नेकी जो हुई, बाकी तो कुछ है नहीं। तो अगर ये जन्नत में जा सकते हैं तो चलो मेरी वजह से ये जन्नत चला जाए। जब वो बंदा नेकी देने का ऐलान कर देगा ना, तो फरिश्ता ऐलान करेगा एक बंदे ने अपनी नेकी दूसरे को दे दी। अब क्यामत के दिन ये इतना अजीब काम होगा कि मखलूक हैरान हो जाएगी। अच्छा, एक बंदे ने अपनी नेकी दूसरे को दे दी, तो अल्लाह ताला फरिश्ते से पूछेंगे, फरिश्ते तूने कैसा ऐलान किया? वो कहेगा, या अल्लाह, एक बंदे ने अपनी नेकी दूसरे को दे दी। अल्लाह ने फरमाया, नेकी देने वाला कौन है? ज़रा उस सखी को मेरे पास कर दो। चुनाचे वो सखी अल्लाह के सामने पेश होगा। अल्लाह फरमाएंगे, तू इतना बड़ा सखी कहाँ से आया कि आज के दिन तूने नेकी दूसरे को दे दी? वो कहेगा, या अल्लाह, मेरे पास तो थी ही एक नेकी, मैंने सोचा मैंने तो जहन्नम जाना ही है, अगर मेरी वजह से ये जन्नत जा सकता है तो मैं इसको दे देता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, तूने बंदे होके इतनी सखावत का इजहार किया और मैं तो परवरदिगार हूँ, या मैंने तुझे भी जन्नत दे दी, इसे भी जन्नत अता फरमा दी। तो एक नेकी पर दो बंदे जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह की फिर रहमत का ऐसा मामला होगा। हज़रत क़ारी मुतय्यब रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, वो फरमाते हैं कि दो बंदों को अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह उन दोनों को जहन्नम जाने का हुक्म देंगे कि तुमने बुरे काम किए, जाओ जहन्नम में। जब वो अल्लाह हुक्म फरमाएंगे ना जाओ जहन्नम में, तो एक तो भागने ही लग जाएगा जहन्नम की तरफ, और दूसरा जो है वो थोड़ा चलेगा फिर पीछे देखेगा, फिर चलेगा फिर पीछे देखेगा। अल्लाह ताला उन दोनों को फिर बुला लेंगे, हाँ भाई पहले तू बता, तू तो भाग ही पड़ा। वो कहेगा, या अल्लाह, दुनिया में तो आपके हुक्म की तामील में मुझसे कोताही हुई, गलती हुई, अब आपका हुक्म हुआ जाओ जहन्नम में, तो मैंने सोचा ये आपका आखिरी हुक्म है, इस पर तो अमल कर लूँ, मैं भाग पड़ा जहन्नम की तरफ। अल्लाह दूसरे से पूछेंगे, भाई तू चलता था फिर मुड़ के देखता था, फिर चलता था फिर मुड़ के देखेगा। वो कहेगा, या अल्लाह, पूरी ज़िंदगी आपने मेरे साथ रहमत का मामला किया, अगरचे आपने आज मुझे जहन्नम जाने का हुक्म दे दिया, मैं हुक्म की तामील में चल पड़ता था फिर पीछे देखता था शायद आपको रहम आ जाए, फिर देखता था फिर सोचता था शायद रहम आ जाए। अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा, अगर तुझे मेरी रहमत पे इतना भरोसा है, तुम दोनों को मैंने जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह ताला अपनी मखलूक का हिसाब इतनी रहमत से लेंगे। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए दुआ मांग रहे थे और आपके पास हजरत मुगर सिद्दीक लाना भी बैठे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी ना, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत के लिए बख्शिश का जो है दुआ फरमा रहे हैं, मैं एक लप भर कर लोगों को जहन्नम से निकालूंगा और उनको जन्नत अदा कर दूंगा। अब जब ये वादा हो गया तो उमर लानो बड़े खुश हो गए। उमर लानो ने फिर कहा, हजरत अबू सिद्दीक ने फिर कहा, अल्लाह के विश्व और दुआ कीजिए। तो उमर लानो कहा कि अबू बकर, तुम जानते हो अल्लाह की लप कितनी बड़ी होगी, भई आप गौर करें, अगर गंदम के दाने पड़े हो ना और मैं यूं करके अपनी लप भरूं तो 100-200 दाने नहीं आएंगे, हजारों की तादाद में दाने इस छोटी सी लप में आ जाएंगे। अगर मेरी लप में हजारों दाने आ सकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बड़े हैं और उनकी लप कितनी बड़ी होगी। तो खरब हा खरब लोग उस लप में आएंगे और अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा देंगे। जब अल्लाह ने यह वादा फरमा दिया तो उमर लानो मुतमैन हो गए। अबू बकर सिद्दीक लानो फिर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के विषम और दुआ कीजिए। तो वो उमर लानो कहने लगे, अबू बकर, अल्लाह ने लब भरने का वादा तो फरमा दिया, और क्या चाहते हो? तो अबू बकर सिद्दीक लानो जवाब दिया, उमर, अगर लोगों का और फायदा हो सकता है तो तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी तो अल्लाह ने वादा फरमा दिया, मैं दो लप्पे भरकर निकालूंगा और जन्नत अदा कर दूंगा। तो उमर सिद्दीक लानो ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के विषम और दुआ कीजिए। तो उमर लानो ने कहा, अबू बकर, जब दो लप्पों का वादा अल्लाह ने भर लिया तो अब मज़ीद दुआ क्या करनी। उन्होंने फिर यही कहा, उमर अगर औरों का फ़ायदा हो सकता है तो फ़ायदा होने दो, क्योंकि उनके अंदर भी रहमत गालिब थी। चुनाचे नबी इस्लाम ने उनके कहने पर फिर दुआ मांगी और अल्लाह ने वादा फरमा दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 लप्पे भर कर जहन्नम से निकालूंगा और इतने खरब हा खरब इंसानों को बग़ैर किसी अमल के आपकी दुआ की बरकत से जन्नत अदा करूँगा। ये हदीस मुबारक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में नकल करते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि मेरे अमल तो इस काबिल नहीं कि मैं अपने अमलों की वजह से जन्नत में जाऊं। हाँ, मैं इतनी दुआ ज़रूर करता हूं कि अल्लाह जिनको आप बग़ैर किसी अमल के महज अपनी रहमत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता फरमाएंगे, मुझे भी आप उनमें शामिल फरमा लेना। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए और इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साथ फ़कत जन्नत अदा फरमाए। हमारे पल्ले तो खाली हैं, झोलियाँ खाली हैं, कोई एक भी अमल नहीं जो अल्लाह के हुजूर पेश करने के काबिल हो। बस अल्लाह की रहमत का मामला है। बेगुनाहों में चला जाहिद जो उसको ढूँढने, मगफिरत बोली इधर आ मैं गुनाहगारों में हूँ। वो करिश्मे शान रहमत ने दिखाए रोज़े हश्र, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूँ। अल्लाह की इतनी रहमत क़यामत के दिन होगी कि बेगुनाह भी चीखेंगे कि या अल्लाह तेरी रहमत गुनाहगारों पे इतनी हो रही है तो मैं भी गुनाहगार हूँ, मेरे ऊपर भी रहमत फरमा दीजिए। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में चंद अशार लिखे, पंजाबी ज़बान के हैं, उम्मीद है आप समझ लेंगे। मुझे कोई तर्ज लगा के पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पढ़ूं और आप उनको सुने। फरमाते हैं, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद दा बई तख्त शाहिदी लोड़ नहीं, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद दा बई तख्त शाहिदी लोड़ नहीं, दिल मस्त रहे विच मस्ती दे बई अकल दनाई दी लोड़ नहीं, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद दा बई तख्त शाही दी लोड़ नहीं, दिल मस्त रहे विच मस्ती दे बई अकल दनाई दी लोड़ नहीं, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद दा मेरे कल्ब से आ गुनागार दे विच, तेरी याद दा दीवा बलदा रहे मेरे कल्ब से आ गुनागार दे विच, तेरी याद दा दीवा बलदा रहे वल ई जग ऊ जग कब्र हशर, किसे बई रोशनाई दी लोड़ नहीं, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद दा कर अपने हबीब दा इश्क अता, जग सारे तू बेने आज चकर कर अपने हबीब दा इश्क अता, जग सारे तू बेने आज चकर सर झुकदा रहे दर तेरे उत्ते, दर दर दी गदाई दी लोड़ नहीं, मिले कतरा इश्क़े मोहम्मद दा ई आबद दा अर्ज कबूल थी वे, दरबारे इलाही दे अंदर ई अब्द दा अर्द कबूल थी वे। दरबारे इलाही दे अंदर लूलू विच होवे इश्क़े नबी। किसे बई आशनाई दी लोड़ नहीं, मिले कतरा इश्क़े मुहम्मद दा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
दरस quran.com www.darsquran.com